वहाँ पर हमने सनातन धर्म के संबंध में महाप्रभु जी की वाणी का बताया, जिसमें थोड़ा सा हम साथ बताऊंगा आपको। बाली एक प्रदेश है जहाँ पर बाली के नाम से बाली, बाली मैंने सुग्रीव का भाई बाली, और वहाँ पर उसके चिन्ह है अभी। भारतीय संस्कृति की छाप वहाँ पर है अभी भी, वो सब चीजों की,
रामायण महाभारत,
रामायण महाभारत विशेष करके रामायण इत्यादि की लीलाएं वो लोग प्ले करते हैं, और वैसा ही सब ये रखते हैं। रामायण कई कथाओं का अपनी भाषा में वो लोग सब ये मलेशिया में दक्षिण भारत के लोग अधिक, और उस सब दक्षिण भारत से भी पहले स्कूल से संबंधित, अब धीरे 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 सभी दक्षिण भारत वाले हम लोगों के विचारों को सुनकर के बड़े प्रभावित हुए, बहुत सब हम लोगों के विचारों में आ गए, वैसे हरिनाम कर रहे हैं। इस तरह से सिंगापुर में वैसे ही बहुत से हिंदू लोग हैं, बहुत वहाँ पर भी हम लोगों के विचारों सुनकर के बड़े प्रभावित।
सिंगापुर में दक्षिण भारत लोग मिनी इंडिया ही नाम दिया इलाका का नाम,
वहाँ के एक बड़े टाउन में सिंगापुर में मिनी इंडिया दक्षिण भारत के, वहाँ पर सब भारे पड़े, वहाँ पर भी हिंदी में सुनना चाहिए, वहाँ पर प्रचार के बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत क्षेत्र वो लोग ग्रहण कर लेते हैं। हमारे भारत में ये है मायावाद इतना इधर से लगा हुआ है, इंटरेस्टेड लोग हैं यहाँ के मायावाद, उनको मायावाद और बहुत देवताओं की पूजा को छोड़ा करके एकांतिक पूजा में लगाना कृष्ण के बड़ा भारी कठिन है। देवी देवताओं की पूजा ये लोग नहीं छोड़ सकते। हम समझते हैं कि यहाँ पर जितने आदमी बैठे हैं मथुरा के, इनमें से ऐसे ही 5-10 ऐसे होंगे जो कि गणेश शंकर और सबकी दुर्गा की पूजा नहीं करते, आते हैं तिलक भी धारण करते हैं किंतु सबकी पूजा, और वहाँ हम जिनको कर देते हैं वो सब लोग छोड़ करके एकांतिक रूप में राधा कृष्ण।
अभी तो नवदुर्गा आने वाली
है, हियर इन इंडिया इट इज वेरी हार्ड टू प्रीच बिकॉज दे कैनॉट गिव अप द वर्शिप ऑफ दुर्गा काली गणेश शंकर हनुमान नवदुर्गा, वेरी हार्ड। Even taking Harinam and Diksha Devi, kintu vahan par aisa, but they are not like so. But there is something, they will take and after some time they may give up. Wo log chhod dete hain, yadi sang nahi ho to chhod denge, lekin to yahan wale jaise hain wo chhodenge nahi, acha hai bura hai Krishna ko nahi chhodenge, wo wahan wale chhod denge, they will give up that worship of Radha and Krishna and chanting, remembering, when there will be no good association. But here not. But they are doing, from generation they are doing, and they do. अपने वंश परंपरा से वो लोग करते रहते हैं। हमने वहाँ पर कुछ आचरण दिए, उसका थोड़ा सा एक झलक आप लोगों को या नवदीप से मिली। बहुत से अच्छे अच्छे आसन है उनका, यदि ट्रांसलेशन करके और उसको पत्रिका में दिया जाए उसमें तो बहुत ही अच्छा होगा।
फिजी में जो दिया था हिंदी में दिया था,
तो हम लोग देखते हैं ओंकार ब्रह्म का यह शब्दाक्षर ब्रह्माक्षर ब्रह्म सप्त ब्रह्म या भगवान का शाब्दिक अथवा आक्षरिक अवतार ओंकार है। इसी से गायत्री प्रकाशित हुई या इसी की व्याख्या गायत्री से सारे वेद प्रकट, और सारे वेद के 4 भाग में विभाग इत्यादि दिए गए, और इसके बाद में व्यास जी ने इसके सात तात्पर्य को ग्रहण करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए लोग समझेंगे, वेदों के भाव इतने गहरे हैं कि उनको समझना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए उन्होंने कुछ सरल सहज रूप में पुराणों में उसकी व्याख्या, किंतु वो ऐसे अलंकारिक भाषा में ये पुराण है कि साधारण लोग भी समझें, किंतु उसकी गहराई को छूना बड़ा भारी कठिन है। पुराण भी कठिन अलंकारिक भाषा में होने के वजह से सब लोगों की सुविधा के लिए कुछ रोचक बनाते हुए उन्हीं विषयों को महाभारत, महाभारत का भी प्रतिपाद्य वही कृष्ण है, वेदों का भी प्रतिपाद्य वेदस्य अहम् सर्व वेदस्य गायत्री में भी वही है, ओंकार में भी वही है। गायत्री गायन करने से त्राण करती है और उसमें छंद है, उसमें तीन विकार है और ये सब गायत्री भी उन्हीं को कृष्ण को हरगह देवस्य धीमहि। गायत्री की उपासना श्री लक्ष्मी हमारे राधा जी की उपासना है, स्त्रीलिंग उसमें है, स्त्रीलिंग माने शक्ति, सर्वोच्च शक्ति पराशक्ति की सर्वोच्च अवस्था जिसमें है, उसके लिए धीमहि उनको ध्यान करते हैं। कृष्ण का नहीं, गायत्री का प्रतिपाद्य कौन है? श्रीमती राधिका जी है, इसलिए धीमहि उनको जो परम पुरुष की अत्यंत प्रिया है, सिद्ध बिलेवेड ऑफ कृष्ण, सो धीमहि एनसी सुख कम इन अवर हार्ट प्रचोदया, वो हमारे हृदय में स्फूर्ति। इसी प्रतिपाद्य विषय को करने के लिए यह पुराण, अंत में महाभारत, महाभारत में ऐसी लड़ाई झगड़ा का लेकर के किया है कि साधारण आदमी भी इसके ऊपरी भाव को समझ लेंगे, किंतु भीतरी भाव में प्रवेश करना भी में दुर्योधन में युद्ध हो रहा है, भीष्म और अर्जुन में युद्ध हो रहा है, उनमें परस्पर बातें हो रही हैं, इंटरेस्टिंग करने के लिए जो उसमें बातें हुई, लक्षागृह है और सब बातें हैं, अर्जुन का द्रौपदी का को वर्ण करना है, ये सब बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मनोहारी कथाएं, किंतु कथाओं का देने का तात्पर्य क्या था? भर्गो देवस्य धीमहि, सबका प्रतिपाद्य विषय एक है। इसके बाद ही उनका मन नहीं भरा पुराणों के संकलन करने के बाद, अरे लेकर के जाओ, बच्चों को लेकर के यहाँ नहीं आना चाहिए, उसको ले आई हारमोनियम भाई जरा ला दे, पाठ के बाद में ये सब दिखता कम जा रहा है, मंगा दो मंगा दो, आप उधर में चली जाएंगे कुछ देर के बाद ही
चली जा,
यही पता है। तो अब इसमें सनातन धर्म की बात मैंने बतलाई, ये सब चीजें सनातन है, ओंकार कब से है?
नासिकल,
अनादिकाल से, गायत्री भी अनादिकाल से, उसका प्रतिपाद्य विषय भी अनादिकाल से है, वो कभी भी अदलता बदलता नहीं है, सदा के लिए है, सदा रहेगा। इसीलिए गीता में उन्होंने बतलाया ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव एक सनातन है। फिर वो बस जैसा धारण करता है,
वसंसि
जीर्णानि यथा विहाय नमामि गृह्णाति नरो प्राणी
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
छिन्दन्ति सस्तानि
नैनं छिन्दन्ति
सस्तानि। स्थाणु अचलोऽयं सनातन,
स्थाणु रचलो आयं किसके लिए, जीवात्मा के लिए, इसलिए जीवात्मा एक सनातन वस्तु है। वेदों में उपनिषदों में शास्त्रों में यह सब बतलाया गया। और एक और सनातन है, सनातन का भी सनातन, वो कौन है जिसे ये सनातन सब निकले हुए हैं, अहोभाग्यम अहोभाग्यम
नंद गोप ब्रजौ
प्रस्थान जन्मित्रम परमानंदनम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये पूर्ण ब्रह्म सनातन कौन है, किसके लिए कहते, जो ब्रज के लोगों के मित्र हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के प्राण प्रियतम सखा है इन ब्रजवासियों के, किंतु वो हैं कौन, पूर्ण सनातन ब्रह्म कौन कह रहे हैं इसको, कौन रहा, ब्रह्मा जी कर रहे, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी ने और कई कितनी बार कहा चतुर्श्लोकी में कि मैं ही पहले था, सत असत, सत मैंने जो व्यक्त है, असत मैंने जो नहीं व्यक्त है, ये सब से पहले ये मैं था, और मैंने ही ब्रह्मा जी को या ब्रह्मा जी को कृष्ण ही उपदेश दिया। और चतुर्श्लोकी में वो दूसरा श्लोक क्या है, देता हूँ तुम लोग, ब्रह्मा जी को सब ज्ञान दे दिया किंतु उनको कुछ नहीं आया, उपलब्धि नहीं हुई, उपलब्धि नहीं हुई, सब ज्ञान बतला दिया, जैसे हम लोग सब भक्ति बतला रहे हैं किंतु भक्ति नहीं आ रही। तब उन्होंने अपना हाथ ऐसे कर दिया, ग्रहण गतितम माया, हमारी कृपा से तुम सब कुटा, और साथ ही साथ उनकी प्रेम भक्ति की अनुभूति। कृष्ण कैसे सबसे पहले हैं, सनातन वस्तु हैं, जीवों का कृष्ण से उस नित्य सनातन से और इस सनातन से जीवों का क्या संबंध है, इसी का नाम सनातन धर्म है, ये कभी भी लुप्त नहीं। एक सनातन परब्रह्म कृष्ण भगवत्ता की सीमा, ओम प्रकाश के भी, ओम ओंकार के भी मूल, ओंकार भी इन्हीं से उपस्थित हुआ, ये उनका अक्षर ब्रह्म रूप है कृष्ण का। कृष्ण को देखते हैं सहज नहीं, किंतु अक्षर के रूप में ये प्रकाश है, इसलिए यही इसी की उपासना की जाए तो धीरे धीरे खारे समुद्र को मंथन करने से मेघ, मेघ से वर्षा, वर्षा से जीवन मीठा पानी, ये मिलता है। ऐसे ही ओंकार एक खरा भगवान ब्रह्म का रूप है, जिसको आदमी को समझना पड़े, उनसे संबंध स्थापित करना भी कठिन। तो यही कृष्ण जो परब्रह्म की चरम सीमा है, ये हुए उपास्य, और उपासक कौन हुआ, ये जीवतत्व, दोनों के बीच का जो संबंध है ये उपासना, ये उपासना ही नित्य सनातन धर्म है। किंतु कौन सी उपासना जो भागवत में दी गई, गीता में दी गई, जो वेदों और उपनिषदों में दी गई, वो उपासना और सब जो देवता देवियों की उपासना ये नहीं, इसलिए कौन सी उपासना? जो भागवत पहले दिया गया गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, पहले ये, और जिसके बाद में महाप्रभु ने कहा ये हो बाह्य, तब वो ले गए ज्ञाने प्रयास उत्पाश्य नमंते एव जीवंति सन्मु खरिता भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता तन्वान मनोभि प्रायश अधिक जीतो अपेक्षित। ये सब शरणागति से भी बहुत ऊपर। भक्ति एक ऐसी चीज है जो भागवत में गीता में उपनिषद में दिया है, जो यही जीवों का, जीवों के साथ में भगवान का संबंध है और उनकी ये रिलेशन है। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति,
भक्ति वशो पुरुषः भक्ति
रेवैनम। इसलिए ये वेदों में कहा गया, ये संबंध है भक्ति, भक्ति के अतिरिक्त और दूसरा कोई भी संबंध कृष्ण के साथ हमारा नहीं है। भक्ति सबसे श्रेष्ठ, किसी को कैसी उपासना, ऐसी उपासना सबसे श्रेष्ठ है जो भगवान के पास में जो भक्ति ले जाए। भक्ति है क्या? पराशक्ति की, सर्वोच्च पराशक्ति की, लादनी और संधनी संबित का सार जो संधनी के ऊपर में प्रकाशित होता है, यह है प्रेम। भगवान के साथ में जो प्रेम है, यही हमारा नित्य सनातन धर्म है। किंतु इतना ही कहने से नहीं चलेगा, जत भी यह वर्षा बतलाया, जस देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु प्रकाशन थे, यह बतलाया इंगित में वेदों में, पुराण में कुछ कुछ बतलाया और श्रीमद् भागवत में अच्छी तरह से। कौन सी उपासना, कौन सी भक्ति हमको भगवान के पास में ले जाएगी? भक्ति साधारण रूप में ले जाएगी भगवान के पास में। अब इसके लिए जैसे शांडिल्य सूत्र में लिखा क्या, सापरानुरक्ति ईश्वर, ईश्वर में परा अनुरक्ति, अनुरक्ति जो है प्रीति है, स्नेह है, जो ये परा तत्व, प्रेम भी साधारण नहीं, अनुरक्ति भी साधारण नहीं, परा माया से अतीत हो, जो कृष्ण को वशीभूत करती है, इस भक्ति का नाम, इसका नाम है भक्ति, परानुरक्ति ईश्वरे सभक्ति, वो भक्ति अनुरक्ति। नारद इत्यादि ऋषियों ने भी इसका आविष्कार किया, उन्होंने भी ऐसे श्रीमद् भागवत में इसको विशेष करके और खुलासा करके कि कौन किया, चैतन्य महाप्रभु अपने आप। अब श्रीमद् भागवत में हम चलेंगे, ये भक्ति क्या है, पहले उन्होंने लिखा सबई पुंसान पर धर्म गतो भक्ति रदप तजे अहितुक्य अपतिहता पतिहता
आत्म यह आत्मा
समस्त, जिसके द्वारा जो भक्ति, भक्ति मैंने सेवा, जो सेवा, जो चित्त की वृत्ति निरंतर तैधारावत अविच्छिन्न गति से हो, इसके प्रति अथोक्षज के प्रति, अथोक्षज माने क्या, इंद्रियों से अतीत जो हैं, अर्थात नारायण लक्ष्मी का नारायण के प्रति जो भाव है, ऐसे भाव को पहली स्थिति में उन्होंने भक्ति बतलाया, जो कि समस्त इंद्रियों के द्वारा अपने प्रभु की जिस प्रकार से सेवा करती है। किंतु व्यास जी यही कह करके संतुष्ट नहीं हुए, इसे और बहुत आगे ले गए, विशेष करके वेदों का विभाग कर, उपनिषदों को भी प्रकाशित कर, पुराणों को प्रकाशित कर, महाभारत में गीता जैसे उपनिषद को प्रकाशित कर, और उसमें जीव और कृष्ण का संबंध दिखला करके भी संतुष्ट नहीं हो सके, तो नारद जी की कृपा से अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच जदा पाशया, उन्होंने परम पुरुष को पर संपूर्ण रूप में देखा, संपूर्ण रूप में देखने का क्या दर्प
रूप गुण लीला परिकर्ष
उनका जितना जो कुछ था रूप सर्वोत्तम रूप, भगवान के जितने भी रूप हैं उनमें सर्वोत्तम रूप निसिंह राम परा इत्यादि हैं, किंतु इनमें भी एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान राम इत्यादि है भगवान, किंतु स्वयं भगवान एक ही चंद्र विविध रूप में दिखता है, वैसे एक ही ब्रह्म भगवान विविध रूपों में उपासना के भेद से दिख पड़ते हैं, इसलिए उनको बतलाया कृष्णस्तु भगवान। वो कैसे कैसे जो बाल्यकाल से जिनका जन्म हुआ मथुरा में और गोकुल में, मथुरा में जैसे प्रकाशित हुए, गोकुल में जैसे उन्होंने जन्म लिया और वहां से जितनी भी लीलाएं हुई बचपन में कितने सुंदर हैं उनकी कैसी लीलाएं, यशोदा जी का बात्सल्य कैसे है, इसके बाद में पौगंड में अपने सखाओं के साथ में गोचारण इत्यादि जो कर रहे हैं, बंशी वादन भी अब करने लग गए हैं, अब उठती हुई किशोर अवस्था में वृंदावन की जो लीलाएं एक ही रात में, किंतु रात कितनी लंबी
ब्रह्म रात
सारी लीलाओं का एक तरह से संकलन है वो, उसमें समस्त लीलाएं हैं, जितने भी लीलाएं हैं किशोर की विशेष करके गोपियों के साथ की सारी लीलाएं उसमें, इसको भी उन्होंने देखा। जसोदा जी उनके कमर को बांधते हुए देखा, दामोदर लीला भी देखा, गोपियों के पैरों में पड़ते हुए कृष्ण को देखा, ओ गोपी गीत इत्यादि भी देखा, सब सुना, गोवर्धन लीला इत्यादि भी देखा और भ्रमर गीत भी देखा, सारी ब्रज लीलाओं को संपूर्ण रूप में देखा, इसके बाद में कुछ द्वारका लीला इत्यादि भी देखा और जीवों के कल्याण के लिए जस्य वैश्वयमाने कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उपपद्यता शोक मोह भया, जीवों के कल्याण के लिए उसका संकलन करके उसको प्रकाशित करके श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया। इतना देने के बाद में भी संतोष नहीं हुआ, कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं, अखिल रसामृत मूर्ति प्रशमर रुचिरुद्धतर का पाली राधा प्रयाण विदुर जयति, कृष्ण द्वादश रसों के समुद्र अथाह समुद्र हैं, जो अपने रसों से सबको वशीभूत कर लेते हैं, ललिता इत्यादि को भी, किंतु राधिका के वशीभूत है अंतिम में जो दिया गया राधा प्रिया माने क्या, कृष्ण प्रिया राधिका नहीं, राधा के प्रिय माने क्या, राधा के वशीभूत रहने वाले जो कृष्ण है उनके प्रेम के वशीभूत हैं, उस कृष्ण की वंदना। यदि भक्त स्वामी सिंधु नहीं होता ग्रंथ, उज्ज्वल मणि ग्रंथ इत्यादि नहीं होते तो कृष्ण के माधुर्य को समझ लेना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए रूप स्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी शक्ति स्फूर्ति में कराई, जिसे हमारे माधुर्य को जान लें। कंस ने कृष्ण को देखा, जरासंध ने कृष्ण को देखा, दुर्योधन ने कृष्ण को देखा, किंतु उनके सौंदर्य से वो लोग आकर्षित हुए कि वो लोगों का क्रोध और बढ़ गया मारने की इच्छा, क्यों कृष्ण तो वही अगासुर बकासुर कृष्ण मुरली लिए हुए बजाते हुए जा रहे हैं और उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि उनके अंदर में प्रेम का साधन करने वाला जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, आधार नहीं है, इसलिए अभी भी कृष्ण हमारे सामने आ जाए विशेष कुछ लाभ नहीं, कह देंगे कृष्ण हमको एक सुंदर लड़की से शादी करा दीजिए और हमको पुत्र हो जाए और करोड़ों डॉलर मिल जाए, रुपए मिल जाए और संसारी की रोग हमको कहीं और कुछ मांगो और नहीं मांगो, क्योंकि वो आधार नहीं है, नहीं समझते हैं। इसलिए अभी वो दर्शन नहीं देंगे, जब वो प्लेटफॉर्म तैयारी हो जाएगा, शुद्ध सप्त हृदय में आएगा, वो राधा जी का ही लादनी और संबित का भाव जब आएगा, तब हम लोग उनको समझ सकते हैं, उनकी सेवा इसके पहले नहीं हो। इसलिए रूप गोस्वामी के अंदर में उन्होंने शक्ति का संचार किया। कौन सी शक्ति का? ये शक्ति का कृष्ण सोच रहे हैं लीला के अप्रकट के पश्चात, कृष्ण की लीला प्रकट हो गई इसके पश्चात में सोच रहे हैं, जगत में मुझसे सुंदर और कोई नहीं, मुझे देख करके लोगों की आंखें सुशीतल हो जाती, सब सब तो नहीं होगा, जो उच्च कोटि के भक्त हैं वही उनका दर्शन, हमारे हम हमारे देख करके जितने भी चराचर प्राणी हैं सभी लोग सभी के नयन जुड़ा जाते हैं, अत्यंत सुशीतल हो जाते हैं, किंतु मैं राधिका जी के दर्शन करने से हमारे नयन सुशीतल, हमारी बंसी की बहुत मीठी आवाज है, मैं विश्व के सबको आकर्षण कर लेता हूँ बंसी की आवाज से, किंतु मेरी बंसी और मधुर बोली भी हार मान जाती है श्रीमती राधिका के सुंदर मधुर वाणी से, मैं सब कुछ विस्मित हो जाता हूं। हमारे अंग सुशीतल हैं, जिसकी सुशीतलता से विश्व सुशीतल हो सकता है, किंतु श्रीमती राधिका के स्पर्श में मैं मेरा हृदय
जुदा है पूरा।
किंतु विचार कर लिया भय विपरी, किंतु विचार यदि किया जाए तो ये पहले हम देखते हैं, ये गोपियां कृष्ण राधा जी की तो बात तो छोड़ो, गोपियां कृष्ण की सहेली हैं, मंत्री हैं,
सहाया गुरव शिष्या भुजिष्या बांधवा प्रिय,
दास दासी हैं, यहाँ तक कि गुरु भी हैं, नीचे से ऊपर जो कुछ जितना संबंध जगत में है सब कृष्ण का गोपियों के साथ में, गोपियां उनके प्रेम की गुरु भी हैं, गोपियां सब विषय में श्रेष्ठ है, कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं, तो भी एक बात है विशेष, वो क्या है? राधा जी को मैं देखता हूँ, क्या हो गया?
कारण चले गए,
राधा जी हमें देख करके पागल हो जाती हैं, राधा जी मुझे देख करके पागल हो जाती हैं, होश नहीं रहता, उस समय उनका दुख कैसा होता है, महा विप्रलंब भाव, थर प्राणी उनके इस दुख को देख करके मूर्छित हो जाते हैं। मैं राधिका जी को देखता हूँ जो हमसे सुंदरी है, किंतु हमारा ऐसा नहीं, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? दूसरी बात, तो क्यों नहीं होता, क्या कारण है? मैं मेरा रूप भी बहुत सुंदर है, मुझे देख करके राधिका जी को जैसा भाव होता है, राधिका जी को देख करके मुझे ऐसा नहीं होता, क्यों? हमारा जो जो रूप है, गुण है, लीला है, इसको दूसरे सभी लोग आस्वादन करते हैं, किंतु राधिका जी सर्वोच्च स्थिति में आस्वादन करते हैं, क्यों? और उनको कौन सा सुख प्राप्त होता है जो इनकी ऐसी दशा होती है, कारण क्या है? तो उन्होंने देखा ये मेरे अंदर में कुछ ऐसी चीज है जो सबको उन्मत्त करती है, राधिका जी को भी उन्मत्त करती है, वो चीज मेरे अंदर में कुछ है, किंतु वो जब तक राधा जी की दृष्टि, राधा जी की भावना हमारे अंदर में नहीं आएगी, मैं नहीं समझ, इसलिए राधा जी हमको बनना पड़ेगा, राधा जी के भावना को लेना पड़ेगा, राधा जी की प्रणय हमारे प्रति जो उनका प्रणय है वो जब तक प्रणय नहीं आएगा तब तक मैं नहीं समझ सकता, मेरे लिए समझना होगा कठिन। इसलिए राधा या प्रणय महिमा, राधा जी का प्रणय की महिमा कैसे, हमारे इन सब माधुर्यों को किस रूप में वो ग्रहण करती हैं और उनका कौन सा सुख होता है, इसलिए राधा जी का उन्होंने भाव लिया। कब लिया ये विचार करें ये लेंगे, किंतु जब उन्होंने जन्म लिया मायापुर उस समय उनके अंदर में कुछ कृष्ण की भावना थी, जो मैं कृष्ण हूं, किंतु उनका श्री अंग राधिका जी के श्री अंगों से ठका है, राधिका जी के कलर से उनके श्री अंगों के प्रभाव से ढक करके सुनौला तो हो गया है किंतु अभी भावना रंगी है, इसलिए वो छोटी छोटी बच्चियों के यहाँ जाकर के तुम्हारा तुम शादी करेगी, तुम हमारी उपासना करो, ये कृष्ण का भाव है। इसलिए उस समय में कृष्ण का भाव उनके अंदर है, रूप तो ले लिया है किंतु भावना नहीं आई, इसके लिए गुरु की जरूरत है, बिना गुरु के ये चीज नहीं आएगी। संन्यास भी ले लिया इसके लिए तभी नहीं हुआ, संन्यास लेकर के इन चीज को शिक्षा देने के लिए। अभी देखो वहां पर सत पर है भाव में क्या दिखलाया, भगवान के रूपों को दिखलाया, राधा जी का कुछ, राधा जी किस रूप में करती है ये सब कुछ नहीं। अभी जब वो संन्यास लिया, संन्यास का मंत्र ही है क्या है, मैं गोपी भाव बोल देता हूँ, गुरु जी उसको गोपी का भाव देते हैं, ये संन्यास का भाव है। तभी नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा हुआ, तब वो गए दक्षिण में, दक्षिण में जाकर के
गुरु ढूंढने के लिए गए,
गुरु को ढूंढने के लिए गए, वहां राय रामानंद जी से भेटे। राय रामानंद जी कौन है, तो ललिता जी के पास में उन्होंने क्यों नहीं लिया,
शिक्षा ली गुरु से,
क्योंकि राधिका जी का जन्म और विशाखा जी का जन्म एक समय में हुआ, इधर में विश्वभानु महाराज जी के घर में राधिका जी का जन्म हुआ, उसी नक्षत्र में उसी राशि में उसी समय में ठीक विशाखा जी का जन्म हुआ, कमई करला, दोनों के गुण एक समान। वो कौन सी राधिका नायिका कौन सी नायिका है, मध्या है सब विषय में, वैसे ही वो मध्य सब विषयों में अत्यंत प्रखरा भी नहीं, अत्यंत मृदु भी नहीं, दक्षिण भी नहीं, बाम्य भी नहीं, बीच की सब
धीरा मध्य।
इसलिए राधिका जी के जितने भाव हैं वो सब विशाखा जी, इसलिए रमी विशाख, हे विशाख, राधा जी को यहाँ विशाखा कहा गया, किस लिए, जो कुछ गुण आप में है वो विशाखा में, विशाखा में जो गुण है, इसलिए दोनों बराबर की है ना। यदि ललिता के यहाँ जाती तो वो पूरी शिक्षा नहीं होती, इसलिए उनके पास में गए और वहां पर उनके जितने भाव है विशाखा जी के सब उनमें उन्होंने संचय, शिक्षा गुरु का ये क्या है, वैशिष्ट है, अपने भावों को उसमें संचरित कर देता, सब कुछ दे दिया, कहाँ तक दिया, इहो बाज्य लेकर के माशल्य तक, सर्वधर्म सर्व
सर्वोत्तम
नहीं सब सर्वसाद सख्य को कहा, उसे भी और ले गए बासल्य, उसे भी ले गए गोपियों के, जब गोपियों का कहा तब वो कहे और कुछ है, तो उन्होंने कहा इसके बाद में कहने वाला और सुनने वाला तो जगत में कोई है,
ये सर्वोत्तम
है, उन्होंने देखा जो ठीक है ये हमारा छात्र ठीक है कि नहीं है, विशाखा जी देख रहे हैं, तब उन्होंने ठीक है ये जो है इसको दिया। इसके बाद में और सब बतलाने के बाद में तब उन्होंने कड़ी परीक्षा ली, ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है कि नहीं, हमने जो राधा जी के भाव जिसको बतलाए हैं, शिक्षा दी है, इसको ग्रहण किया कि नहीं? इसलिए उन्होंने कहा कि ऊपर से तुमको तो बहुत देख रहा हूँ सन्यासी, और भीतर से देख रहा हूँ तुम कौन है, काला है, किंतु है तुम कौन? तो उन्होंने साथ ही साथ में परीक्षा दी। क्या परीक्षा दी?
रसराज महाभाव।
तब बजट ठीक परीक्षा में, तब उनको 95 या 99 मार्क दिया, अभी कुछ रख लिए। अब वो जब अभिनय करने पर जब वो देखेंगे तब वो देखेंगे, अभी इस तरह से परीक्षा में उनको पास। ये जो भावनाएं जो है ये क्या है? राधा जी का जो कृष्ण के प्रति सेवा की वासना है, भावना है, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का सबसे ऊंचा, इसे पढ़कर के सनातन धर्म का और कोई रूप नहीं हो सकता। ये ब्रजधाम में, नित्य ब्रजधाम में, अप्रकट धाम में ये नित्य चल रहा है, और उसी की एक झलक यहाँ पर 10 वर्ष के लिए उतरते, 10 वर्ष नहीं कितने के लिए, वृंदावन में उसकी झलक निकलती है, और उसमें किशोर की ये करीब 1.5 वर्ष की। बस यही सनातन धर्म की संपूर्ण सबसे शेष और अंतिम सीखी जो राधिका जी कृष्ण की सेवा, इसकी एक थोड़ी सी झलक जीवों को देती क्या झलक? उन्नत उज्ज्वल रस कौन सा है? वही जो राधा या प्रणमी मतिम चीज है, ये उन्नत उज्ज्वल रस है, उसको आस्वादन कर रहे हैं। किंतु स्वभक्ति, स्व स्व माने राधिका, भक्ति मैंने यहाँ पर ये उन्नत उज्जवल रस, उसकी शोभा, उसकी एक झलक, एक कण जगत को देने के लिए, रूप मंजरियों का भाव जो कृष्ण और राधा जुगल की सेवा करते हैं इसको देते, इसलिए बतलाया महाप्रभु जी के लिए प्रेम रस निज्जा परिचय आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करते। बहुत से लोग कहते हैं कि महाप्रभु आए थे प्रेम को आस्वादन करने के लिए, प्रेम को प्रचार करने के लिए, गलत। रामचंद्र जी भी तो प्रेम का आस्वादन करते हैं, हनुमान जी भी प्रेम से सेवा करते हैं, उद्धव जी प्रेम से सेवा करते हैं, ये पांडव लोग और द्वारकापुरी की महर्षियां भी बड़े प्रेम से और ऊपर सेवा करते हैं। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं आए, इसलिए ब्रज भक्ति का प्रकाश करने के लिए, ब्रज भक्ति को प्रचार करने के लिए, और उसी का जो अंतिम बिंदु है राधिका जी का भाव, उसको आस्वादन करने, इसलिए स्वभक्ति श्रीयम शोभा। शोभा माने क्या? जैसे एक लता क्रीपर की पता और उसकी मंजरी, उसकी शोभा होती है, उसी प्रकार उसी को देने के लिए जगत में आए और बाकी आस्वादन करने के। उन्नत उज्ज्वल रस का दो भाग, उसमें से एक भाग को तत्त भाव इच्छा बन इसी को देने, ये साधारण रूप में संक्षिप्त रूप में सनातन धर्म का यश सार। आज यही तक रहे, किसी को हारमोनियम लाया?
हाँ लाया।
कहाँ?
इधर रखा।